चिकित्सा की संगोष्ठी में सम्मिलित होने वाले वैद्य महोदयों, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इन दिनों का बहुत अच्छा उपयोग हुआ। चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, संवाद हुआ, परिसंवाद हुआ, तरह तरह की बातें, अपने अपने विचार सामने आए, ना आए तो इकट्ठे किस लिए हुए थे, बहुत अच्छी बात हुई। अब समापन करते हुए थोड़े में मैं ये समझा दूं कि विपश्यना क्यों है। इसलिए समझाना पड़ता है कि 2000 वर्षों से, थोड़ा समय नहीं है, 2000 वर्षों से अपने देश से ये विद्या लुप्त हो चुकी थी, और उसी तरह लगभग 2000 वर्षों से सारी मूल बुद्धवाणी भारत से लुप्त हो चुकी थी। जब ये दोनों यहाँ नहीं रही तो कोई क्या समझेगा कि बुद्ध ने क्या सिखाया, कोई कैसे समझेगा कि विपश्यना क्या है। तो उन 2000 वर्षों में बहुत सी बातें, काल्पनिक बातें, बहुत सी बातें विरोध पैदा करने वाली बातें, बहुत सी बातें भ्रांतियों से नहीं जानते हैं इसलिए भ्रांति के मारे चली, चलती गई। मैं खुद भ्रांत रहा, ऐसे परिवार में जन्मा, सौभाग्य मानता हूँ ऐसे परिवार में जन्मा जिसमें धर्म का वातावरण, गीता प्रेस गोरखपुर के आर्द्र भक्ति का वातावरण, उसमें जन्मा, उसमें पला, खूब भक्तिभाव, अच्छी बात है। वो न होता तो अध्यात्म का बेस कहाँ से मिलता, आधार कहाँ से मिलता। लेकिन उसके साथ साथ ये जो दुर्भाग्य से भारतवर्ष में बुद्ध और बुद्ध की शिक्षा को लेकर के जो भ्रांतियाँ फैली, वो बचपन से ही मेरे मानस में भी समाविष्ट कर दी गई। बुद्ध महान है क्योंकि हमारे भगवान विष्णु का अवतार है, उसकी पूजा, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी शिक्षा ना बाबा ना। शिक्षा बुद्ध ने इसीलिए दी, कोई उसकी शिक्षा का पालन करके स्वर्ग में चला जाए, नरक में जाए, उसकी शिक्षा ऐसी है। विष्णु का अवतार हुआ ही इसीलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको स्वर्ग में जाने से स्वर्ग में उपद्रव हो जाएगा, तो इनको नरक भेजना चाहिए। तो बातें बड़ी मीठी मीठी और बड़ी समझदारी की, लेकिन लक्ष्य एक ही कि ये कैसे नरक में जाएं। हमें ही बचपन से सिखाया गया कि बुद्ध अच्छे हैं, उनकी शिक्षा नहीं अच्छी, चले मत जाना कभी। मेरा सौभाग्य हुआ 31 वर्ष की उम्र होते होते एक परिस्थिति ऐसी आई कि मुझे उसी बुद्ध की शिक्षा के लिए अपने जीवन के 10 दिन देने पड़े। मन में एक संकोच कि कहीं मैं बौद्ध न बन जाऊं, अरे बौद्ध बन गया तो नास्तिक हो जाऊंगा, नास्तिक हो जाऊंगा तो नरक और कुछ नहीं है, बौद्ध बन गया तो ऐसा अहिंसक हो जाऊंगा कि कोई आए मुझे मार जाए काट जाए, हम तो कुछ अपना बचाव भी नहीं करेंगे, कोई आए हमारे देश को लूट के ले जाए हम तो कोई बचाव भी नहीं करेंगे, हम तो अहिंसक हैं। ना बापा ना, अपने काम का नहीं है, और घर बार छोड़ के सन्यासी हो जाओ, भिक्षु हो जाओ, अरे ना बापा ना, हमें तो गृहस्थ रहना है, हमारे काम का नहीं। और जितनी भी बातें सुनी वो हमारे काम की नहीं, यानी आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, तब क्या धर्म हुआ, कैसा गुरु है, ये सारे प्रश्न मन में कांटे की तरह चुभते थे। फिर भी एक परिस्थिति ऐसी आई कि मुझे 10 दिन जाना पड़ा। बहुत समय नहीं है कि उसका सारा विवरण दूं क्यों जाना पड़ा, लेकिन जाना पड़ा। मेरे एक मित्र ने दबाव दिया कि मैं जिस भयंकर रोग से पीड़ित हूँ वो रोग किसी तरह से नहीं मिट सकता, और सारी दुनिया में घूमा, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास अपना इलाज कराया, कहीं नहीं निकला। तो मेरे मित्र ने कहा तो 10 दिन विपश्यना कर ले, ये तेरा मन से संबंधित रोग है, मन में इतना तनाव है, और मैं जानता था तनाव तो है क्योंकि इतना भयंकर क्रोधी, क्रोध है, काम है, अहंकार है, ये 3 दुश्मन सिर पर सवार, तो तनाव होगा ही, व्याकुलता होगी ही, और ये कहते हैं इससे निकल जाएगा। तो ऐसे विकारों से मुक्ति पाने की कामना तो बचपन से, सदाचार का जीवन जीने की कामना तो बचपन से, बहुत छोटा जब पाठशाला में जाता था तो हमसे साहब की सुबह सुबह प्रार्थना कराई जाती थी, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीर वृद्धारी बने। ये पाठ बचपन से है और उस पाठ का नामो निशान नहीं जीवन में। वो कैसे आए इतनी आर्द्र भक्ति, थोड़ी देर बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगा, फिर वैसे के वैसे, वैसा ही क्रोध, वैसे ही वासना, वैसा ही अहंकार, कैसे आए? ये कहते हैं कि उससे निकल जाएगा, निकल जाएगा तो भी स्वधर्म ये निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह। अरे भले ये निकल जाएगा तो क्या हुआ, भयावह है, नरक की ओर ले जाएगा, हम नहीं जाते। तो हमारे दोस्त ने कहा कि तुम जो आचार्य है उससे मिल तो लो, मिलने में क्या बिगड़ता है, मत जाना, बात तो कर लो। मैंने कहा ये बात तो ठीक है, मिलने में क्या गया, गए उनके पास। इतने संत, इतने सादगी का जीवन, ब्रह्म सरकार के इतने ऊंचे अफसर, इतने ऊंचे अफसर किस ठाट बाट से रहें, कोई ठाट बाट नहीं, एक सादगी संत की तरह रहते हैं। हमने अपनी बात कही तो कहा रोग के लिए मत आना, ये तुम्हारे शरीर का रोग निकालना है तो डॉक्टर के पास जाओ, हम तुम्हारे मन का रोग निकालेंगे और वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन मन का रोग निकालना हो, विकार निकालने हो तो हमारे पास आओ। तो फिर हमने कहा देखिए मैं तो बहुत कट्टर हिंदू हूँ, यहाँ बर्मा में ऑल बर्मा हिंदू सेंट्रल बोर्ड का प्रेसिडेंट भी रहा और मंत्रियों को का देखभाल करता हूँ और बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें मेरा हिंदुत्व बड़ा प्रबल है, मैं कैसे बौद्ध हो जाऊँगा? तो हंसे तो कहा अच्छा बौद्ध मत होना, पर हम जो सिखाते हैं वो तो समझ, हम तुम्हें 10 दिनों में शील सदाचार का पालन करना सिखाएंगे। तुम्हारे हिंदू धर्म में कोई विरोध है? शील सदाचार का विरोध किसको होता, हमारे हिंदू धर्म में तो खास है, होना ही है शील, हम सदाचारी बने, बचपन से सुनते आए, बस वो सिखाएंगे कैसे करो, मन ही वश में नहीं होगा तो अगला कदम मन को वश में करना सिखाएंगे, उसे समाधि कहते हैं। क्या इतराज है? अरे हमारे यहाँ ऋषि लोग मुनि लोग जंगल में जाके समाधि लगाते हैं, मैं गृहस्थ, कोई मुझे समाधि लगाना सिखाए? ना ना बाबा, कोई इतराज नहीं है, और क्या, कुछ नहीं होता समाधि से, ऊपर ऊपर से मन शांत हो जाएगा, निर्मल भी हो जाएगा, जड़ें वैसे की वैसी रहेगी और उन जड़ों में से ज्वालामुखी न जाने कब निकले, फिर वैसे के वैसे हो जाओगे। उनके ऐसे कहते ही हमको विश्वामित्र का दृश्य सामने आया, हमको दुर्वासा का दृश्य सामने आया, हमको पराशर का दृश्य सामने आया। अरे सचमुच इतने बड़े बड़े ऋषि, इतने बड़े बड़े मुनि कैसे फिसल गए? तो इस बात में कुछ दम है कि जड़ें नहीं निकली, तो जड़ें कैसे निकले? तो कहा प्रज्ञा से निकलती है, हम तीसरा कदम प्रज्ञा का सिखाएंगे, प्रज्ञा से जड़ें निकल जाएंगी, बात खत्म, फिर विकार आएगा ही नहीं। प्रज्ञा में इतराज है? प्रज्ञा में क्या इतराज है? अरे हम गीता का पाठ करते हैं, लोगों को गीता सिखाते हैं, प्रज्ञा ही प्रज्ञा की बात करते हैं, वही तराग भय क्रोध है सिद्ध धीर मुनि उच्चते, ऐसा सिद्ध प्रज्ञ बनो जो राग नहीं रहे, जो क्रोध नहीं रहे, भय नहीं रहे, प्रज्ञा में क्या विरोध होगा? किसको प्रज्ञा कहते हैं? जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो प्रज्ञा है, परोक्ष ज्ञान है वो प्रज्ञा नहीं है, किसी दूसरे का ज्ञान है, तुमने सुन लिया, श्रद्धा से मान लिया, क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए ऊपर ऊपर से मन शुद्ध हो गया, अच्छा हो गया, चिंतन किया, मान लिया, फिर थोड़ी देर के लिए वैसा का वैसा, फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। जड़ों तक जाने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारी अनुभूति वाला ज्ञान होना चाहिए, सुनो सबकी, चिंतन करो उस पर अनुभूति पर उतारो तो प्रज्ञा होगी, वो भावनामय प्रज्ञा, वो घटना घटित हो रही है और उसको हम जान रहे हैं, तो जड़ों तक पहुंच गए। वो सिखाते हैं, करके देखो, 3 बात के सिवाय चौथी बात नहीं है, न बुद्ध ने सिखाई और न मैं सिखाऊंगा। बुद्ध ने खाली 3 बात सिखाई, ये पहला आश्चर्य हुआ, इन 3 बातों में तो कोई खराबी नहीं, नरक में कैसे जाएंगे, सदाचार का जीवन जिएंगे और नरक में जाएंगे, मन को समाधिस्थ करेंगे नरक में जाएंगे, प्रज्ञा से मन को निर्मल करेंगे, जड़ों तक निर्मल करेंगे, नरक में जाएंगे, ये कैसे हुआ, कहीं ना कहीं भ्रम है। अच्छा करके देखता हूँ, करके देखता हूँ इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं कभी भी बौद्ध नहीं बनूंगा, खाली आजमा के देखता हूँ कि ये सच कह रहे हैं क्या। इस दृष्टिकोण से गया और देखो सचमुच सचमुच इसके सिवा चौथी बात नहीं। चौथी बात अपने आप उपस्थिति है। मन निर्मल होता है तो मैत्री जागती है, करुणा जागती है, सद्भावना जागती है, जीवन बदलने लगता है। वो अपने आप आते तो क्या बुराई है। जितनी बातें हमारे यहाँ बचपन से हम सुनते आए धर्म की बातें, उनका प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है। कोरा उपदेश नहीं है, कोरा चिंतन मनन नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। और फिर देखा उस दस दिन के बाद सारा क्रोध निकल गया, सारी वासना निकल गई, सारा अहंकार निकलेगा नहीं। जो भयंकर रोग थे वो निकल गए, माइग्रेन निकल गया, उसके लिए मोर्फिया लेते थे वो निकल गया, लेकिन ये कम होने लगे, कम होने लगे। आश्चर्य, कम हुए जा रहे हैं। जो इतने आर्द्र भक्ति से नहीं कम हुए, वो इस विद्या से कम हुए जा रहे हैं, कम हुए जा रहे हैं, जीवन बदल गया। तो फिर ये सोचा कि बात तो अच्छी है, पर हमारे यहाँ अगर बुद्ध में कोई खोट नहीं होता, उसकी शिक्षा में कोई खोट नहीं होता, तो उसे देश निकाला क्यों देते। हमारे इतने इतने बड़े विद्वान आदि शंकराचार्य जैसे कैसे झाड़ू मार के निकाल देते। कुछ ना कुछ खोट है, इन्होंने नहीं सिखाया, लेकिन उनकी वाणी में कहीं ना कहीं खोट होगा, वाणी पढ़ के देखें। उन्होंने भी कहा देखो ये विद्या को ठीक से समझोगे तो दोनों पक्ष, एक तो अनुभूति का पक्ष और एक शिक्षा पढ़ उनके सिद्धांतों का पक्ष, दोनों में परफेक्ट होना चाहिए, हमारे मन में भी जागा। पहले हमने धम्म पद पढ़ा, एक पद ऐसा नहीं जिस पर अंगुली टिका के कह दी ये तो गलत है, ये तो एक एक पद में अमृत भरा पड़ा, अमृत में रोमांच होता, पढ़ते पढ़ते रोमांच होता। एक बार और पढ़ के देखें, एक बार और तीन बार उसका पारायण किया, कहीं दोष नहीं लगा। फिर ये हुआ कि ये तो इनका प्रमुख ग्रंथ है, बाकी ग्रंथों में कुछ ना कुछ होगा, और पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे पढ़ता गया तैसे तैसे लगा कि कितनी उल्टी बातें अपने देश में, अपने देश ने बुद्ध को समझा नहीं, बुद्ध की शिक्षा को समझा नहीं, और आरोप पर आरोप लगाते चले गए, निराधार आरोप। अरे जहाँ पर तिल नहीं उसका ताड़ बना दिया। तिल तो हो ताड़ बनाने के लिए, कण तो हो मन बनाने के लिए। क्या किया हम लोगों ने अपनी हानि की, तो बात समझ में आई। फिर एक बात यह आई कि मुझ पर तो ऐसा लाभ हुआ, औरों पर भी हो सकता है क्या। देखें तो हमारे मित्रों को भेजा, जरा दबाव से भेजा, जरा समझा के भेजा, उन्होंने भी देखा ये आदमी बदल गया। अरे कितना बदल गया, वही गोविंद का है, कैसे बदल गया, तो चलो करके देखें। हमारे सैकड़ों मित्र गए वहाँ बर्मा में, सबको वही परिणाम मिला, तो एकदम आश्वस्त हो गया। घर के लोग गए, वही आश्वस्त हो गया, विद्या में कोई खोट नहीं है। जितनी बातें कही जा रही है बुद्धि के खिलाफ, वो सारी या तो द्वेष के भाव से कही गई, मैं कहता हूँ सारी बातें द्वेष से नहीं कही गई, बहुत सी बातें अज्ञान से कही गई, पता ही नहीं बुद्ध ने क्या सिखाया, और उसको लेकर के कोई मनगढ़ंत बात किसी ने कह दी और वो चल पड़ी। अब तो निकलनी चाहिए, अब तो दूर करना चाहिए उसे। कितनी बातें उनके खिलाफ कि उन्होंने जनसंपर्क ही नहीं किया, वो तो जंगल में रहे तपस्या करते रहे। अरे इससे ज़्यादा झूठी बात और क्या होगी। तपस्या 6 वर्षों तक की इस विद्या को खोजने के लिए, इसके बाद तो सिखाने में लग गए सबको, लोगों को तैयार किया और कहा जाओ तुम भी सिखाओ। चरत भिक्खवे चारिकंग बहुजन हिताय, बहुजन हिताय, तुम्हारे केवल अपने हित के लिए नहीं, तुम्हारे अपने सुख के लिए नहीं, बहुजनों के हित के लिए जाओ सिखाओ। जो 60 आदमी तैयार किए थे सबको कहा अलग अलग दिशा में जाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को धर्म मिले और मैं भी जाता हूँ। और वहाँ से वो प्रवचन दे करके गए, गया में 1,000 साधुओं को ये विद्या सिखा करके और सही रास्ते पर लाए। राजगिरी गए, वहाँ के लाखों आबादी के लोगों को यही धर्म सिखाया, उसी में लगे रहे। जहाँ जहाँ गए, लोगों के समूह में गए, जनता में गए। जो व्यक्ति रात को मुश्किल से 2-2.5 घंटे सोए, और वो भी आराम करता है, केवल जागृत अवस्था में लेटा हुआ है, शरीर को आराम देता है, बाकी समय लोक संपर्क ही लोक संपर्क, उसके लिए ये कहे कि वो अरण्य में चला गया, लोगों को धर्म नहीं सिखाता है, कैसी गलत बात। इससे ज़्यादा गलत बात और क्या होगी। एक और अजीब बात सुनने को आई, कि उसने आयुर्वेद को नष्ट कर दिया, क्योंकि आयुर्वेद में तो सर्जरी है, काट फाट भी है, कहीं किसी मांस भक्षण इत्यादि की भी बात है, और उन्होंने तो अहिंसावादी भाव बंद करा दिया, सब बंद करा दिया, तो ये जीवक कहाँ से उपजा? कल्पना है, जीवक के जीवन की कल्पना है। अरे उसका जैसा सर्जन आज तक भारत में नहीं हुआ, कितने उसने सर्जरी की और कितने अच्छे परिणाम आए, और साथ साथ बुद्ध की विद्या भी सीखी, करुणा भी सीखी, मैत्री भी सीखी, सदा प्रसन्न रहने वाला, उसके चेहरे की प्रसन्नता को देख करके इस प्रसन्नता में उसको अग्र की उपाधि दी, उस अग्र की उपाधि को पालन करने वाला अग्रपाल बना, तो आयुर्वेद का दुश्मन हो गया वो। तक्षशिला से आयुर्वेद सीख कर तो आया और उसी का प्रचार किया। अरे जो स्वयं भिषक है, जो स्वयं वैद्य है, जो स्वयं चिकित्सक है, वो कैसे लोगों को कहेगा तुम चिकित्सा मत करो? चिकित्सा करो, ढंग से करो। लक्ष्य तुम्हारा लोगों को लूटने का नहीं हो, लक्ष्य तुम्हारा लोगों की सेवा का हो। दुखी हैं, मेरे पास इस दुख को दूर करने का साधन है, शरीर का रोग है, ठीक है, मेरे पास साधन है, मन का रोग है, मेरे पास साधन है, क्या बुरी बात है इसमें? शल्यकर्ता की उसको डिग्री है, लोग उसको कहते हैं, सर्जन है, काट फाट को कैसे बंद करेगा? मन के सारे कांटों को निकाल के फेंकने वाला व्यक्ति सर्जन है ना। कैसी कैसी बातें चल पड़ी अपने यहाँ, आश्चर्यजनक बातें हैं। एक बात और हमारे सामने आई, जो कि मेरे मन में भी आई, बचपन से सुन रखा था कि हमारे देवी, हमारे देवता, हमारा ईश्वर अपना नाम सुनने का बहुत शौक है, बार बार लोगों से अपना नाम सुनता है, बहुत खुश होता है, और जो ज़्यादा बार नाम लेता है उसको इतना अच्छा इनाम देता है, क्योंकि उसको नाम का शौक है इसलिए इनाम देता है। बचपन से सुनते आए, भाई हमने तो बहुत नाम लिया रे, रोज़ सुबह आध घंटे जो पाठ करते थे, जो भजन करते थे, लाभ हुआ उसका, निकम्मा ऐसा नहीं कहते, घंटे दो घंटे मन शांत रहता था, फिर वैसा का वैसा। और इस विद्या में नाम की ज़रूरत नहीं, और परिणाम उससे अधिक आए। बात समझो क्यों होता है ऐसे, हम किसी भी शब्द को बार बार दोहराएंगे, मैंने घड़ी बांध रखी है और बैठ जाऊं घड़ी 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 घंटे भर बोलूं, मेरा मन शांत हो जाएगा। पर आसान है क्या बोलना? खुद मन कहे क्या पागलपन है, क्या घड़ी घड़ी बोल रहे हो, क्या मिलेगा इससे? कोई कह दे कि तू राम राम बोल, या अल्लाह अल्लाह बोल, या जीसस जीसस बोल, वो बड़े खुश होंगे, वो खुश होंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उस मारे बोलता हूँ, उस मारे नाम लेता हूँ, अच्छा है। जो कुछ नहीं करता उसके मुकाबले ये नाम लेने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है, थोड़ा तो अपने मन को शांत करता है, थोड़ा तो निर्मल करता है, पर क्या करे बेचारा, भीतर तो वही दुर्वासा का दुर्वासा, भीतर तो वही विश्वामित्र का विश्वामित्र, भीतर तो वही पराशर का पराशर, फर्क क्या पड़ा? चढ़े निकलनी चाहिए ना। समझो, जब भी किसी शब्द को उच्चारण करते हो, हर शब्द की अपनी एक तरंग होती है, और मन उस तरंग में लिप्त हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन हमारी स्वाभाविक तरंग क्या है? हमें क्रोध जागता है तब कैसी तरंग जागती है, वासना जागती है तो कैसी तरंग जागती है, अहंकार जागता है, हमको उसका निरीक्षण करते करते उससे छुटकारा पाना है। वो तो दब गई और हमने ऊपर ऊपर से एक नैसर्गिक तरंगों को दबा करके एक हमने बनावटी तरंग के सहारे अपने मन को शांत किया, अच्छी बात। जो जड़ों में जो तरंग चल रही है उसका क्या हुआ? इसलिए यथाभूत जो हो रहा है वो यथाकल्पित नहीं, यथा आरोपित नहीं, यथा वांछित नहीं, यथाभूत जो घटा, जो घटना सचमुच अभी घटी है, हमें हमारे अनुभव पर उतरी, वो सच्चाई, उसके सहारे चलते 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 स्थूल स्थूल सत्य का सहारा होगा, आगे बढ़ते बढ़ते सूक्ष्म 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 तर सूक्ष्म तम भौतिक जगत का सूक्ष्मतम सत्य प्रकट हो जाएगा। ये जो शरीर मट्टी के लोथ जैसी है, मृणमय शरीर है, चिन्मय हो गया, चिन्मय हो गया, एक एक कण जागृत हो गया, एक एक कण, एक एक अटम चेतन हो गया। बहुत बड़ी बात हुई ना, यहाँ तक पहुँचना चाहिए ना। केवल ये बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था, कहने से क्या हो गया ऐसा होने, और ये करवाती है उपासना। आज के 2600 वर्ष पहले जिस व्यक्ति ने अनुभूति के बल पर यह सिद्ध किया कि ठोस कुछ नहीं है, जैसे आज का वैज्ञानिक, पश्चिम का वैज्ञानिक कहता है देर इज नो सॉलिडिटी इन द मटीरियल वर्ल्ड एट ऑल, मेयर वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस, वो कहता है सबो लोको पकंपितो पकंपितो, उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, आज के साइंटिफिक लेबोरेटरी है उसके पास, यही है अपने भीतर सच्चाई को देखते देखते डिवाइड डाइसेक्ट डिसइंटीग्रेट डिसोल्व करते 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 इस अवस्था पर पहुंच गया। और इस अवस्था पर लोगों को पहुंचाता है, केवल वो ना पहुंच गया, कोई करे इस अवस्था पर पहुंच जाएगा। और चित्त जो इतना ठोस है, वो भी ठोस है, कैसा ठोस है, क्रोध जागा तो कितना घनीभूत होकर जागा, वासना जागी कितनी घनीभूत होकर जागी, अहम जागा कितना घनीभूत होकर जागा, टुकड़े करते 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 तरंग रह गई, केवल तरंग ही तरंग। उस अवस्था पर आने वाला व्यक्ति विकारों का गुलाम कैसे होगा, विकार उसके सिर पर कैसे चढ़ेंगे, वो देख रहा है तरंग है, तो आई और गई आई और गई, क्या महत्व है इसे, निकलता चला गया, क्या बुरी बात हुई उसमें, हम राग निकालना चाहते हैं, द्वेष निकालना चाहते हैं, कैसे निकले, राग और द्वेष जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, तो निकालें कैसे उसे। तो नाम का पारायण करना, नाम को बार बार रटना अच्छी बात है, थोड़ी अच्छी बात है, एकदम अच्छी बात नहीं है। केवल मन को ऊपर ऊपर से शांत कर लेना, निर्मल कर लेना, जो कुछ नहीं करता उसके मुकाबले बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उससे भी अच्छी बात अपने पास है, जड़ों तक विकारों से मुक्त होने की बात अपने पास है, क्यों नहीं उसका प्रयोग करें, उसका प्रयोग करना है ना। इसलिए इसलिए विपश्यना में कहीं कोई शब्द का उच्चारण नहीं है, नो वर्बलाइजेशन, कोई रूप आकृति का कोई आलंबन नहीं है, नो विजुअलाइजेशन, नो इमेजिनेशन, कोई कल्पना नहीं, जो यथार्थ, और यथार्थ भी अपने बारे में, अपने बारे में, अपने शरीर और अपने चित्त के बारे में, क्योंकि बंधन इसका ही है, इससे मुक्त होते 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 चित्त और शरीर के परे की अवस्था पर पहुँचेंगे, वहाँ पर न कोई उत्पाद है, न कोई व्यय है, न तरंग है, वो तरंगातीत अवस्था है, नित्य है, शाश्वत है, वहाँ पहुँचना है ना। केवल उसकी बात करेंगे तो क्या होगा, केवल उसकी कल्पना करेंगे तो क्या होगा, उसको दार्शनिक रूप से मान लेंगे तो क्या होगा, जानना है, जानने और मानने में जमीन आसमान का अंतर है, जानो, केवल मान के मत रह जाओ, बस यही तो विपश्यना कराती है। इससे क्यों घबराते हो, करके देखो, मैंने भी करके देखा तो पता लगा क्या है, अन्यथा वैसे रह जाता, अरे क्या पढ़ा है विपश्यना में, ये तो हमारे धर्म को नष्ट करती है, आत्मा को ही नहीं मानती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज संसार में कोई एक आदमी ये कह दे कि मैं आत्मा को स्वीकार करता हूँ, और इस स्वीकार करने की वजह से अब देखो मुझ में राग नहीं आता, मुझ में द्वेष नहीं आता, और अगर इस तरह से होने लगे तो काहे 10 दिन, काहे 1 महीना, काहे ये सारा जंजाल, भाई बस आत्मा को मान लो ना, सारे विकार निकल जाएंगे, एकदम वितराग हो जाओगे, होता नहीं ना, धोखा है ना। अरे आत्मा है तो भी हमको विकार निकालने हैं, आत्मा नहीं है तो भी हमको विकार निकालने हैं, कोई आत्मा होगी हमारे भीतर तो बेचारी खुश होगी ना, उसकी मुक्ति हो जाएगी ना, हम बुरा काम क्या कर रहे हैं। कोई परमात्मा होगा और उसने सारे नियम बनाए हैं कि राग जगाओगे तुम्हें कष्ट होगा, तुमको दुख मिलेगा, द्वेष जगाओगे दुख मिलेगा, हम उसके नियमों के अनुसार चलते हैं, कोई नियामक नियम बनाए और उसके नियमों का पालन करे, नियामक खुश होगा कि नहीं। कोई विधायक विधान बनाए और हम उसका पालन करें, विधायक खुश होगा कि नहीं। तो उसको खुश करने का तरीका तो ये है कि अगर सचमुच उसका बनाया हुआ विधान है, उसका बनाया हुआ नियम, उसका पालन कर रहे हैं, वो नाराज क्यों होगा, हम गलत काम क्या कर रहे हैं। अरे इस जंजाल से बाहर आओ भाई, एक समय ऐसा आया जब विरोध ही विरोध की बातें ढूंढते रहे, कैसे विरोध खड़ा करें, कैसे विरोध खड़ा करें, कैसे बदनाम करें। अपने यहाँ एक लोक कथा है, लोक कथा है, किसी राजा का राजकुमार बहुत बहुत प्रज्ञावान, बड़ा दयालु, बड़ा समझदार और बड़ा प्रजा में प्रिय। राजा ने दूसरा विवाह कर लिया, छोटी रानी आ गई, अब छोटी रानी के पुत्र हुआ तो उसको लगा कि राज तो इसे मिल जाएगा बड़े को, इसको किसी तरह बाहर निकालो तो हमारे बेटे को राज मिलेगा। कोई षड्यंत्र कर पर उस पर लांछन लगा करके राजा को एकदम ऐसा कर दिया, एकदम निकम्मा है, ये रहने से तो देश का गारत हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको बाहर करो। राजा उसके नशे में, उसके वश में, निकालो इसे। तो उसका सिर मूंड करके, मुंह पर कालिख लगा करके, गधे पर चढ़ा करके देश निकाला दे दिया। और वो राजकुमार देश निकालने के बाद किसी दूसरे देश में गया और अपनी योग्यता के बल पर उस देश का राजा हो गया, बढ़ते बढ़ते सम्राट हो गया। अब इस राजा को होश आया, हमने क्या किया, अपने ऐसे अच्छे लड़के को बाहर भेज दिया और वहाँ वो ऐसा हो गया। आओ आओ आओ, अरे अब अपने लड़के को बुलाओ भाई। ये लोक कथा इसलिए कही, तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए नहीं, ये इसलिए कही कि समझे भाई हमसे कितनी बड़ी भूल हुई। हमने ना समझे में अपने देश के इस महापुरुष को कलंकित किया, बदनाम किया, और बाहर इसका इतना सम्मान हुआ। उसका नहीं, हमारे देश का सम्मान हुआ। पड़ोस के लाखों लोग यहाँ पर हर वर्ष आते हैं, किस कारण आते हैं, उसकी शिक्षा से उनको लाभ मिला इसलिए आते हैं। आते हैं और इस धरती पर हाथ लगा करके अपने माथे पर लगाते हैं, धरती को नमस्कार करते हैं, हमारे देश को नमस्कार करते हैं। अरे ऐसे व्यक्ति ने जिसने धर्म को पूज्य बनाया, भारत को पूज्य बनाया, भारत की संस्कृति को पूज्य बनाया, भारत की सभ्यता को पूज्य बनाया, उसे आज भी हम गधे पर बैठा करके काला मुंह करके बाहर रखें, अब तो समझो उसको लाओ। सोचो जरा क्या किया आखिर उसने, क्या सिखाया उसने, यथार्थ का दर्शन करना सिखाया। कोई भी शिविर में आता है तो पहला काम यह करता है कि जाने अपने आप को, सांस आ रहा है जा रहा है तो सांस तो सबका है ना, सबको एक जैसा सांस आता है। सांस के साथ हम कहीं को नाम जोड़ दो, बुद्ध 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 बोलो, तो फिर संप्रदाय हो जाएगा। बुद्ध बुद्ध क्यों बोले, हम तो महावीर महावीर बोलेंगे, हम तो गॉड गॉड बोलेंगे, हम तो अल्लाह अल्लाह बोलेंगे, कैसे होगा। कुछ नहीं, नाम नहीं, केवल सांस, केवल सांस। इसलिए कि सांस का शरीर और चित्त दोनों से संबंध है और हमको शरीर और चित्त दोनों के बारे में जान करके अपने भीतर के विकारों के जड़ों तक पहुंचना है, इसलिए हम सांस को देखने लगे। 3 दिन होते होते संवेदना आने लगे, संवेदना प्रतिक्षण सारे शरीर में चलती है। जब तक जीवन है तब तक शरीर में संवेदना होगी ही, संवेदना तो निर्जीव में भी होती है पर उसको कौन जाने, इसके साथ मन है इसलिए वो जान रहा है। तो ये मन और शरीर का जो संबंध है उसको हम देख रहे हैं। देख संवेदना जागी, सुखद जागी हमने राग जगा लिया, दुखद जागी हमने द्वेष जगा लिया, और उसी से हमको बाहर निकलना है। तो राग जगते ही, अरे किस पर राग जगाया, ये सुखद है तो क्या हुआ, ये नित्य थोड़ी है, शाश्वत थोड़ी है, ध्रुव थोड़ी है, अनित्य है ना। अभी नित्य शाश्वत ध्रुव दूर है, कहीं इसमें ना उलझ जाएं, छुटकारा पाते हैं। द्वेष जागा, क्रोध आया, उस दुख संवेदना आई इसलिए द्वेष जागा, क्रोध आया। किस पर द्वेष कर रहे हैं, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, तो हमेशा रहने वाला नहीं है। अरे देखें कब तक रहता है, देर सवेर समाप्त हो जाता है। इसको देखते देखते अगर हमने अंतर मन के स्वभाव को पलटना शुरू कर दिया, राग पैदा करने वाले स्वभाव को नष्ट करना शुरू कर दिया, राग पैदा होने के संवर्धन होने के स्वभाव को पैदा कर दिया, खत्म कर दिया, ये स्वभाव हमारे सिर पर चढ़कर हमको पागल बनाता था उसे दूर कर दिया, क्या बुरा गया। और ये तो सब पर लागू होता है, ये राग और ये द्वेष और ये दुख केवल हिंदुओं को आता है, कि केवल बौद्धों को आता है, केवल जैनियों को आता है, कि केवल भारतीयों को आता है, पाकिस्तानियों को आता है, कि हम, अरे सबको आता है, मनुष्य मात्र को, मनुष्य मात्र का रोग है। और ये मनुष्य मात्र के रोग को निकालने के लिए मनुष्य मात्र की विद्या है जो सब पर लागू होती है। इसलिए आज संसार में कोई सांप्रदायिक परंपरा नहीं है जिसका फॉलोवर विपश्यना के शिविरों में ना आता हो। सारे विश्व भर में जो विपश्यना के शिविर चलते हैं उसमें हर संप्रदाय के लोग, एक संप्रदाय अब तक अछूता नहीं कि जिसके लोग ना आए। और केवल संप्रदाय के लोग नहीं, उनके गुरु आते हैं क्योंकि उन तक बात पहुंचती है। अरे ये तो बहुत उत्तम बात है, संसार के जितने भी धर्म परंपरा है सब सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं, करें कैसे ये नहीं जानते। सब चित्त को निर्मल करने का पाठ पढ़ाते हैं, करें कैसे ये नहीं जानते। सब चित्त में प्रेम मैत्री करुणा जगाने का पाठ पढ़ाते हैं, करें कैसे नहीं जानते। ये करत विद्या है, ये करने की विद्या है, ये कोरा उपदेश नहीं है। जब ये बात फैलती है तो आते हैं सारे लोग, विरोध कहाँ। किसी भी शिविर में चले जाओ, हर जाति के लोग वहाँ बैठे हैं, हर संप्रदाय के लोग बैठे हैं, हर व्यवसाय के लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ बैठे हैं, गांव के बैठे हैं, शहर के बैठे हैं, जिनको तुम अछूत कहते हो वो बैठे हैं, जिनको तुम बहुत ऊंची जात का कहते हो, वो बैठे हैं और एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं, और दसवें दिन एक साथ इतना प्यार उमड़ता है। अरे इससे ज़्यादा विश्व बंधुत्व की बात और क्या होगी। ये विश्व बंधुत्व की बात जो व्यक्ति क्रियान्वित करके सिखाया, उसको हमने काला मुंह करके बाहर निकाला। इस बड़े पाप से हमको बचना है। हुआ सो हुआ, आगे नहीं हो। आज के इस सम्मेलन में जो सम्मेलन समन्वय का है, सामंजस्य का है, मेलजोल करने का है, उसका अच्छा उपयोग करते हुए समझें ये सब क्यों हो गया, कैसे हो गया, और अब उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। दुनियादारी की बात है, दो भाई जब आपस में लड़ते हैं, सगे भाई, तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, बाद में होश आता है, मिलते हैं तो दोनों दूसरे का कीचड़ उतारते हैं, फिर वही प्यार, फिर वही प्रेम, फिर वही सद्भावना। अगर दुर्भाग्य से कीचड़ लगा रह गया तो अब तो उतारें, तो समझेंगे ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक बात ये समझ लें कि भारत की दो पुरातन संस्कृतियां, बहुत पुरातन, एक वैदिक संस्कृति बहुत पुरातन और एक श्रमण संस्कृति बहुत पुरातन, बहुत पुरातन। कौन सी किससे ज़्यादा पुरानी है ये शोधकर्ताओं का काम, उस झगड़े में नहीं पड़े, लेकिन बहुत पुरातन है। श्रवण संस्कृति की दो धाराएं, महावीर स्वामी की धारा, भगवान बुद्ध की धारा, तो एक भ्रम ऐसा कि महावीर स्वामी की धारा महावीर स्वामी से चली, बुद्ध की धारा गौतम बुद्ध से चली, ये ना समझ की बात है। श्रवण संस्कृति की, जिसे महावीर की धारा कहें, जिसे जैन धारा कहें, बहुत पुरातन, ऋषभदेव से चली, जिसे बौद्ध धारा कहें वो गौतम बुद्ध से नहीं, बहुत पुरातन, अनेक कल्पों पहले कोई दीपंकर बुद्ध हुए, उनसे कोई एक ब्राह्मण तपस्वी युवक मिला सुमेध नाम का, बहुत कड़ी तपस्या करके आया, उसके मन में ये भाव जागा कि मैं भी ऐसा सम्यक संबुद्ध बनूं जिससे स्वयं भी मुक्त हो जाऊं और औरों की मुक्ति में सहायक बन जाऊं, ये भावना उसमें जागी। उसने अपनी भावना प्रकट की तो सम्यक संबुद्ध दीपंकर, उस समय के जो सम्यक संबुद्ध थे दीपंकर, उन्होंने उसका भूत, उसका भविष्य, उसका वर्तमान, तीनों अवस्थाओं को देखा और उसे आशीर्वाद दिया कि इतने कल्पों के बाद तुम सिद्धार्थ गौतम के नाम से कपिलवस्तु में जन्मोगे और तब तुम सम्यक संबुद्ध बनोगे। इतने कल्पों तक तुम्हें अपनी पारमिताएं पूर्ण करनी पड़ेगी। पारमिताएं माने जो पार चले जाने के सद्गुण हैं, उनको पूरा करना होता है, वो पूरे कर लोगे तब तुम सम्यक संबुद्ध बनोगे। तो कब की धारा ये? इसी तरह से वेदों की धारा भी बहुत पुरातन, बहुत पुरातन। इस देश में ये दोनों धाराएं साथ साथ चली। जब दो साथ साथ चलते हैं तो ये असंभव है कि एक दूसरे को प्रभावित ना करें। दोनों की अपनी विशेषताएं हैं, इसे भी समझना चाहिए, और दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, ये भी समझना चाहिए। पहले तो समझे क्या विशेषता है। वैदिक परंपरा की बेसिक मूलभूत विशेषता यह है कि वहाँ प्रार्थनाओं को महत्व दिया जाता है। अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं, अदिति से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से परमात्मा प्रार्थना करते हैं, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे सद्गुण दो, मेरे द्वेष दूर करो, मुझ में प्रेम जगाओ। बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं, उन्हें विश्वास है इस प्रार्थना से हमारे द्वेष दूर हो जाएंगे, तो प्रार्थना करते हैं। एक परंपरा, एक विचारधारा। श्रवण परंपरा कहती है प्रार्थना से कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं श्रम करना पड़ेगा तो परिणाम आएंगे। तुम श्रम न करो और ये चाहो कि कोई कर देगा तुम्हारे लिए, भाई हम तो नहीं मानते। हम तो कहते हैं श्रम करो, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं श्रम करो। बुद्ध की वाणी हमारे सामने है, तुम्हें ही किच्चंग आतपंग, तपना तुम्हें पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। अख्या तारो तथागत, कोई तथागत होगा, कोई बुद्ध होगा, आख्यात कर देगा, ये रास्ता है। कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए मार्गदाता बन सकता है, मुक्तिदाता नहीं। ये श्रवण परंपरा भरे पड़े हैं इसके उदाहरण। ऋग्वेद का थोड़ा बहुत अध्ययन करके देखा, जगह जगह प्रार्थनाएं हैं, अच्छी प्रार्थनाएं हैं। एक उदाहरण, दोनों परंपराएं विपश्यना को महत्व देती हैं, क्योंकि विपश्यना गौतम बुद्ध की नहीं, न जाने कब की चली आ रही, तो उसका प्रभाव देश के सारे परंपराओं पर पड़ा। विपश्यना बहुत अच्छी है, विपश्यना से द्वेष निकलते हैं, ये बात सबके समझ में आई हुई। तो ऋग्वेद का ऋषि कहता है, यो विश्वाभिविपश्यति भुवन संच पश्यति सैन पार्षदति द्विषः। यो विश्वाभिविपश्यति, जो विश्व के अभिमुख होकर के विपश्यना करता है, मूल अर्थ तो ये है कि भीतर जिसका विशदीकरण हो रहा है, क्रोध जागा है तो बढ़ते जा रहा है, वासना जागी है बढ़ती जा रही है, अहंकार जागा बढ़ते जा रहा है, विशदीकरण हो रहा है, उस विशदीकरण के अभिमुख होकर के यो विश्वाभिविपश्यति भुवना संच पश्यति, सम्यक रूप से करता है विपश्यना। सम्यक रूप से क्या करता है, केवल देख के नहीं रह जाता, ख्याल रखता है हमको समता रखनी है, कहीं इसको लेकर के हमको राग या द्वेष न जगा दें। तो संच पश्यति, ऐसी विपश्यना करने वाला व्यक्ति, यो विश्वाभिविपश्यति भुवना संच पश्यति सन पार्षदति द्विषः, वो हमें द्वेष के दूर कर दे, हमको द्वेष से दूर कर दे, अति दूर कर दे। सन पार्षदति द्विषः, अति द्विषः, दूर कर दे हमको। मांग है ना, प्रार्थना है, अच्छी प्रार्थना है, लेकिन श्रवण परंपरा कहेगी मांगो मत, करो, तुम्हें करना होगा। और देखो ये तरीका है करने का, बात वो कि वो अभिमुख होकर के करो, और वर्तमान के, भूत नहीं भविष्य नहीं, वर्तमान के, जो विश्वाभिविपश्यति भुवन, इस वक्त जो सच्चाई है उसके अभिमुख होकर के तुम काम करो, निकल जाएगा अपने आप। ये दो परंपराएं, लेकिन ऋग्वेद में आगे जाकर ये भी आता है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कोई देवी कोई देवता कोई ब्रह्म, तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। वही वेद कहता है, जो वेद प्रार्थनाओं पर ही आधारित है, प्रभाव पड़ा ना, श्रम भी करना पड़ेगा भाई, बिना श्रम के नहीं होगा। एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, और ये बात फैली तो सारे विश्व में फैली, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। अपने आप को तुम नहीं सुधारोगे, कोई दूसरा सुधारने वाला नहीं है, बात फैली, ऐसा होता ही है। एक परंपरा का, अच्छी बात का प्रभाव पड़ता है, बुरी बात का भी पड़ता है, अच्छी बात का प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं, जब तक विपश्यना में नहीं गया था तब तक तो यही बोध नहीं था कि स्थित प्रज्ञ किसे कहें। वहां के हिंदुओं का जैसा भी एक होल लीडर था, तो जगह जगह प्रवचन, आज ये पर्व है गोविंदा जी, आइए आपको बोलना है, आपको बोलना है, अधिकतर गीता पर बोलना है। और गीता पर बोलता था तो सबसे प्रिय विषय मेरा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, किसको स्थित प्रज्ञ कहें, उसका क्या वर्णन है, उसका क्या स्वभाव है। और फिर समझाता था स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा रोमांच होता था। घर में आके उदासी भी आती थी कि इतनी बातें कराया स्थित प्रज्ञता पर, मुझमें नामो निशान नहीं स्थित प्रज्ञता का, क्यों बोलता हूँ, क्यों इस तरह की बातें करता हूँ। फिर दबाव आता है, अपना अहंकार भी जागता है, अच्छा वक्ता हूँ चलो बोलूँ, लोगों का लाभ होगा। जब 10 दिन की विपश्यना से गुजरा तब समझ में आया ये क्या स्थित प्रज्ञता है। प्रज्ञा में स्थित होना है, खाते पीते चलते फिरते सोते जागते बोलते हर अवस्था में प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा। क्या प्रज्ञा, क्या प्रज्ञा, कि जो सत्य अपने भीतर है उसको जानो, समता से जानो, उसके स्वभाव को जानो, समता से जानो, उसे संप्रज्ञान कहते हैं। सम्यक प्रज्ञा है, स्वयं की प्रज्ञा है, दूसरे की नहीं। वो ज्ञान जो हमें बताया कि देखो ये जागा है, उत्पन्न हुआ, उत्पाद हुआ, टिका, नष्ट हो गया, उत्पन्न हुआ, स्थिति हुई, नष्ट हो गया, इसको जानो। और उसमें अगर स्थित होना है, स्थिर होना है, तो हर समय लगातार संपजन्यंग न रिंचति, ये संप्रज्ञान एक क्षण के लिए भी छूटे नहीं तो उस अवस्था पर पहुँचोगे। आसान नहीं है लेकिन काम तो करना शुरू करना है, करें ना, छूटे नहीं। संप्रज्ञान 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 करना सिखाते हैं। एक बहुत बड़ी खोज बुद्ध की, वो कहता है, बुद्ध कहता है कि ये मैंने कभी सुनी नहीं, पुब्बे अनन सुते सुधम्मे सुचक्खुंगुत पादी, कभी सुना ही नहीं। इस सच्चाई में मेरी आंखें खुली जब सम्यक संबुद्ध हुआ। फिर कहता अरे पुराणो मग्गो, पुराण अरे बड़ा पुराना मार्ग है, क्योंकि देखता है मेरे पहले जाने कितने सम्यक संबुद्ध हुए। और जो सम्यक संबुद्ध होता है वो उस समय की खोई हुई इस विपश्यना विद्या की खोज करता है, लोगों को सिखाता है, स्वयं मुक्त होता है, लोगों को सिखाता है। क्या सिखाता है, तो पुब्बे अननुसुते, उस समय तो नामो निशान नहीं, सुना ही नहीं उसने कि ऐसी भी कोई विद्या है, वो जागी उसके अंदर, लेकिन है तो पुरानी। क्या जागी, वही विपश्यना का स्वयं वर्णन करता है, लोग सीखते हैं, यहाँ भी सिखाया जाता है, मैंने भी अपने गुरु के पास सीखा क्या होता है। जैसे अभी बताया, अपने आप को जानना है, अपने आप को जानना है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना है। तो अपने आप को ये जानना है कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं गोविंदा हूँ, सत्यनारायण गोविंदा नाम का व्यक्ति हूँ, क्या मिला उससे, अमुक का पुत्र हूँ, क्या मिला उससे, मैं कौन हूँ, मेरे बारे में जो सच्चाई है उसे जानकर कहूँ कि मैं कौन हूँ। बार बार का एक मन पर एक प्रभाव पड़ गया कि मैं शिव हूँ, शिवोहम, ओम ब्रह्मास्मि, अच्छी बात है, उनके गुण मेरे अंदर हैं, ये भाव है, लेकिन वो भाव तो कहीं गए, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, अच्छी बात है, हूँ क्या, सचमुच हूँ क्या। भीतर देखता हूँ तो विकारों का पुंज हूँ, राग का पुंज, द्वेष का पुंज, विकारों का पुंज ही पुंज, ढेर ही ढेर, वो हूँ। और उसके बाहर निकलना है, नहीं तो क्या हालत है मेरी, ये वो देखने से निकलेगा ना बाहर, ऊपर ऊपर से अपने को हजार धोखे में रखे, मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, अमर हूँ, मैं कहाँ है अमर भाई, तू देख तो सही क्या हालत है तेरी। वो देखने की विद्या, तो जैसे बताया सांस को देखते 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 संवेदना जागने लगी। बुद्ध एक महान वैज्ञानिक की तरह देखता है कि ये जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, राग जगाने की प्रतिक्रिया करते हैं, द्वेष जगाने की प्रतिक्रिया करते हैं, ऊपर ऊपर से यूँ लगता है कि बाहर कोई घटना घटी, वो घटना हमें अप्रिय लगी कि हमने द्वेष जगाया, हमको प्रिय लगी कि हमने राग जगाया, तो हमारा राग हमारा द्वेष बाहर की घटनाओं को लेकर के है, उसकी उस पर आधारित है। अरे नहीं भाई, वो तो अपेरेंट ट्रुथ है, ऐसा प्रतीत होता है, भासमान सत्य है, असली सत्य नहीं है। असली सत्य ये है कि वह बाहर की घटना के कारण हमारे शरीर में कोई संवेदना जागी, वो संवेदना सुखद हुई तो राग जगाया, दुखद हुई तो द्वेष जगाया। उन गहराइयों तक नहीं जाएंगे तो ये ऊपर ऊपर की सफाई होकर रह जाएगी। बाहर की कोई बात अच्छी लगे तो राग मत करो, बुरी लगे द्वेष मत करो, अच्छी बात है, पर यह क्या ऊपरी ऊपरी बात हुई ना, गहराई से तो हो रहा है। उसको जानने के लिए सारी विद्या। काम करते 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 जैसे बताया कि शरीर के टुकड़े होते 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 विभाजन 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 होते होते भंग हो गया, तरंगे ही तरंगे, केवल परमाणु ही परमाणु, तरंगे ही तरंगे। ऐसे ही मानस के भी तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। बहुत ऊंची अवस्था में जाकर के देखेगा 121 प्रकार के चित्त होते हैं, 52 प्रकार के चित्तवृत्तियाँ होती हैं। किस क्षण कौन सा चित्त जागा, किस चित्तवृत्ति के साथ जागा, कौन सा चित्त जागा, बहुत आगे की बात है, उसकी चर्चा भी करने केवल बुद्धि विलास की बात होगी। लेकिन विपश्यना करने वाला साधक प्रारंभ में अपने मानस के चार मोटे मोटे हिस्से तो जानने लगता है, एक शून्य में जान ले, दो में जान ले, तीन में जान ले, पर उस रास्ते चल पड़ा तो जान लेगा क्या होता है। सारे शरीर में केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, ठोसपना कुछ नहीं है। मानस में भी तरंगे ही तरंगे, ठोसपना कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या हुआ, ये इंद्रियां हमारी, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, मन है, इनके अपने विषय हैं। कोई भी विषय किसी दरवाजे से आके टकराया, कान से कोई शब्द टकराया, टकराते ही क्या हुआ, तो मानस के जो चार खंड है उसमें से पहला खंड अपना सिर उठाता है। उन दिनों की भाषा में, जनता की भाषा में उसे विज्ञान कहते थे। जो कुछ कहें उसका काम कॉन्शियसनेस, उसका काम जानना। कुछ हुआ रे, कान के दरवाजे पे कुछ खटपट हुआ रे, या आँख के दरवाजे पे, नाक के दरवाजे पे, जीभ के दरवाजे पे, त्वचा के दरवाजे पे, मन के, कुछ खटपट हुआ रे, तुरंत मानस का दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाता है। उसे उन दिनों की भाषा में कहा संज्ञा, उसका काम है पहचानना क्या हुआ। अरे तो शब्द आया, क्या शब्द आया, वो शब्द को पहचानता है अपने पुरानी स्मृति के बल पर, याददाश्त के बल पर, पुराने अनुभव के बल पर। यह शब्द है और गाली का शब्द है, यह शब्द है और प्रशंसा का शब्द है। उसने जाना भी और मूल्यांकन भी कर दिया। अब देखता है जैसे ही वो मूल्यांकन हुआ, ये गाली है, बहुत बुरा शब्द है, तो जो तरंगे शरीर में स्वाभाविक रूप से चल रही थी बदल गई। गाली है, बहुत बुरी है, सारे शरीर में दुखद संवेदना, वो तरंगे इतनी दुखद, इतनी दुखद। प्रशंसा है, बहुत अच्छी है, वही न्यूट्रल संवेदना बड़ी सुखद हो गई, बड़ी सुख। ये मानस का तीसरा खंड शरीर पर होने वाली संवेदनाओं का अनुभव करने लगा। सारा काम बड़ी जल्दी जल्दी होता, कहने को इतना समय लग गया, बहुत जल्दी जल्दी होता है। इतने में चौथे खंड ने अपने सिर उठाया, उसे उन भाषा में संस्कार का हमारे कर्म बनना शुरू हुआ, कर्म संस्कार है। जैसे ही संवेदना दुखद लगी कि वो प्रतिक्रिया करते, नहीं चाहिए रे, ये दुखद है, नहीं चाहिए रे, मुझे कोई गाली देता है। ऊपर से तो ये कि मुझे कोई गाली देता है इसलिए नहीं चाहिए, और भीतर से ये कि दुखद संवेदना है, मुझे नहीं चाहिए। दुखद संवेदना के लिए प्रतिक्रिया करता है, द्वेष जगाता है। ऊपर से तो मेरी प्रशंसा हो रही है इसलिए चाहिए रे, भीतर वाला कहता है सुखद संवेदना इसलिए चाहिए रे कर रहा है तू, तुझको ये सुखद संवेदना अच्छी लगती है, तू बार बार ये चाहता है। द्वेष जगने लगा, राग जगने लगा, वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं तो कैसे रोकेंगे। उसको सिखाया कि देख, जैसी भी संवेदना है, सुखद है कि दुखद है, देख तो क्या है, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, देखते देखते परिवर्तित हो जाती है, उसका स्वभाव है, बदल जाना उसका स्वभाव है, प्रकृति का नियम है, निसर्ग का नियम, ये रित है, इसी को वेदों में रित कहा गया, स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है। इतना समझ में आने लगे तो क्या प्रतिक्रिया करें भाई, देखें तो इसे, अरे खत्म हो ही ना, देखें तो इसे, तो राग जगाने की जो आदत है, जो स्वभाव है, वो टूटने लगता है। ऐसा नहीं कि शुरू कर दे सारा टूट गया, जो स्वभाव ऐसा बन गया था कि राग जगाए ही जाओ, क्योंकि दुखद संवेदना सुखद संवेदना आती ही जाएगी, किसी कारण से भी आती ही जाएगी, तो हम राग जगाते ही जाएंगे। द्वेष अंतर्मन में जगाए जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से दबाए जा रहे हैं, अंतर्मन में जगाए जा रहे हैं, तो अंतर्मन का स्वभाव पुष्ट हो जा रहा है। हमारा स्वभाव नहीं टूटेगा, हम कैसे छुड़ करा पाएंगे। हम तो दुखों का संवर्धन किए जा रहे हैं, अपने बंधन को बांधते जा रहे हैं। गीता पर बहुत प्रवचन दिए और बहुत समझने की कोशिश की उन दिनों, जैसे भी समझा। इसके बाद तो गीता के अर्थ ही बिल्कुल भिन्न लगने लगे। अब भी इस तरह के गलत अर्थ होते हैं, जिस तरह गलत अर्थ मैं भी किया करता था उन दिनों। विपश्यना की बात समझ में आई, उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानंग वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से। मूढ़ लोग विपश्यना नहीं कर सकते, जिसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं वो विपश्यना करता है, विपश्यना करता है तो ज्ञान चक्षु खुलते हैं, ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो विपश्यना करता है, सारा रहस्य खुल जाता है। क्या खुल जाता है? उत्क्रामंतं, मानस का एक हिस्सा उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ रे? कान पर, आंख पर, नाक पर, क्या हुआ रे? उत्क्रामंतं। दूसरा हिस्सा स्थितं, रुकता है, क्या हुआ ये? वो जानता है, देखता है, मूल्यांकन करता है, क्या हुआ? तो क्या देखता है कि उसे संवेदना जागी। उत्क्रामंतं स्थितं वापि, संवेदना जागी तो भुंजानं भोगने लगा, सुख जागे तो सुख भोगने लगा, दुख जागे तो दुख भोगने लगा, राग जगाने लगा, द्वेष जगाने लगा। गुणान्वितं, बंधन बांध रहा है, बंधन ही बंधन बांध रहा है, और उस स्वभाव को द्विगुणित कर रहा है, कई गुणा कर रहा है। गुणान्वितं, दो अर्थ, एक तो बांध रहा है, एक उस स्वभाव को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। पागल बन है ना, सारा रहस्य समझ में आ गया कि हम क्यों दुखी होते हैं, हम क्यों विकारों का संवर्धन करते हैं, होश ही नहीं है भीतर क्या हो रहा है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से। और देखता गया और देखता गया, विपश्यना करने वाला व्यक्ति, कोई भी साधना करने वाला व्यक्ति देखता है कि बार बार उसका मन भूतकाल में जाता है, रहना वर्तमान में है, भविष्य में जाता है, भूतकाल में जाता है, भविष्य में जाता है। और विपश्यना कहती है वर्तमान में जीना सीखो, ये क्षण तुम्हारे सामने आया ये सत्य है, जो क्षण चला गया सदा के लिए चला गया, और जो क्षण आने वाला जब आएगा तब आएगा, ये सच्चाई है, वर्तमान क्षण ही सत्य है, इसी पर जीना सीखो तो विपश्यना है, नहीं तो विपश्यना नहीं है। गीता पढ़ते पढ़ते एक जगह आए कि जो बीती हुई बात है उस पर ध्यान मत दो, जो अभी नहीं आई उस पर ध्यान दे दो। गता सुने गता सुनचे नानु सोचन्ति पंडिता, जो पंडित है वो बीती हुई बात का ध्यान नहीं करता, आने वाली बात का ध्यान नहीं करता, विपश्यना है ना, तो वर्तमान का ध्यान करता है, कहाँ रह गए? फिर देखा, बीती हुई बात पर नहीं जाएगा, आगे आने वाली बात पर नहीं जाएगा, ये संसारिक बातें इस पर नहीं जाएगा, लेकिन विपश्यना में आगे बढ़ते बढ़ते एक खोट तो रह जाएगा, मुझको ये अवस्था तो प्राप्त हो गई। अब इसके आगे कहते हैं एक श्रोतापन्न की अवस्था होती है, इसके आगे कहते हैं एक अनागामी की होती है, अनंत की होती है, इत्यादि इत्यादि। वो कब आ जाए, वो कब आ जाए? मैं जो ये कर रहा हूँ विपश्यना, इसका फल कैसे आए, जल्दी से जल्दी फल आए? भगवान कहते हैं कम विपाको अचिंत्यो, तुम जो कर्म कर रहे हो उसका विपाक होगा, उसका फल होगा, चिंतन करने लायक नहीं। जब होगा तब होगा, जैसे होगा तब होगा, तब आगे बढ़ोगे, नहीं तो उस भविष्य के चिंतन में ही लगे रहोगे, और नहीं हुआ तो उदासी आएगी, और हो गया तो प्रसन्नता के मारे नाचने लगोगे। नहीं, वर्तमान क्या है बस वही देखो। गीता में देखता हूँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो, काम करो। अरे विपश्यना है ना, और क्या है? फल की चिंता मत करो, काम करो। मैं न जाने किस तरह के अनुवाद किया करता था, और अब देखता हूँ किस तरह के अनुवाद होते हैं। और विपश्यना में आगे बढ़ा, एक स्टेज आती है, बहुत ऊंचाई पर जाके आती है, जहाँ पर ये जो चार हिस्से हैं, कुछ हुआ उसको पहचाना, मूल्यांकन किया, संवेदना हुई, और उसके बाद कर्म संस्कार बनाने शुरू करे, बंधन बांधने शुरू किए। देखने में केवल देखना हो, दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, देखने में सिर्फ देखना हो, सुनने में केवल सुनना हो, सूंघने में केवल सूंघना हो, चखने में केवल चखना हो, छूने में केवल छूना हो, कुछ नहीं, उसके आगे की बात नहीं। कान में कुछ शब्द आया बस सुना, आँख में कोई रूप बस, इसके आगे नहीं, इसके आगे इसका मूल्यांकन है, इसकी संवेदना है, इसके प्रतिक्रिया, सब बंद। कछुए की तरह अपने आप को लपेट लो, खाली देख लिया बस, और सारे अंग सिमट गए। गीता में पढ़ता हूँ इंद्रियाणि इंद्रियास्ते भेतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, प्रज्ञा में वो प्रतिष्ठित होता है जिसकी इंद्रियाँ केवल इंद्रियों का काम करती है और कुछ नहीं, देख आँखें देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है। अरे विपश्यना है ना, कहाँ समझा, कभी समझा? लोगों से इतना प्रवचन देता था, कभी समझा? जब तक करे नहीं तब तक कितनी अच्छी वाणी क्यों न हो और किसी की क्यों न हो, बात समझ में नहीं आएगी। बुद्ध की वाणी नहीं समझ में आती। बुद्धानुयायी देशों में जाता हूँ, ये विद्या केवल एक देश में कायम रही, भारत में ही नहीं लुप्त हुई, बाहर जाकर भी लुप्त हुई, केवल एक देश में कायम रही और बहुत थोड़े से लोगों में, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा बहुत थोड़े से लोगों में कायम रही, बाकी जगह नष्ट हो गई। तो उन देशों के जो बुद्धानुयायी हैं, कभी कभी बोलता तो प्यार से हूँ लेकिन कोई बात किसी को चुभ भी जाती है, बहुत से लंका के लोग थे सारे बुद्धानुयायी, अपने प्रवचन में कह दिया तुम में से एक भी बुद्धानुयायी नहीं है, अपने को बौद्ध कहते हो, मुझे तो लगता है तुम एक भी नहीं हो। कैसे नहीं है, हम शील का पालन करते हैं, हम चित्त को एकाग्र करने का काम करते हैं, हम प्रज्ञा का काम करते हैं, और बुद्ध ने क्या सिखाया। शील का पालन करते हो अच्छी बात है, समाधि भी जैसी तैसी करते हो अच्छी बात है, प्रज्ञा का भी पाठ करते हो अच्छी बात है, किया गया, प्रज्ञा कैसी होती है किया गया, तुम्हारी विपस्या नहीं रह गई, तुम विपस्या करोगे उस दिन जानोगे प्रज्ञा नहीं की हमने, प्रज्ञा प्रत्यक्ष ज्ञान है, हमें कहाँ ज्ञान आया, पढ़ी है बुद्ध की वाणी पढ़ी है, ठीक यही बात अपने यहाँ, वाणी पढ़ी है, किया तो नहीं ना, करना आया नहीं ना, बड़े दुर्भाग्य की बात हुई। सारी परंपराओं में वाणी बुद्ध की तो नष्ट ही हो गई भारत में, बाहर जाकर के लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया जैसे करना चाहिए, थोड़े से लोगों ने किया, भारत में तो नष्ट ही हो गई, लेकिन भारत में और जो अपनी वाणियाँ हैं उनका भी तो प्रयोग नहीं हुआ ना। जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया तो मेरे सामने पतंजलि योग सूत्र आया, बड़ी प्रशंसा, पतंजल हमारे पुराने ऋषि और वही योग मार्ग के प्रतिष्ठाता, उन्होंने आरंभ किया योग, देखिए तो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत सुना था ऊपर ऊपर से, उसे पढ़ा तो आश्चर्य में रह गया, फिर बात भी समझ में आई, पता भी लगा, हिस्टोरिकल फैक्ट तो ये है कि पतंजल पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था और पुष्यमित्र शुंग अशोक की तीसरी या चौथी पीढ़ी के बृहद्रथ राजा का मंत्री था, सेनापति था, उसने राजा को मार के गद्दी अपने हाथ में ले ली और उसका वो पुरोहित है, तो बुद्ध के लगभग 200 वर्ष के बाद, और तब तक अशोक ने विपश्यना सारे भारत में फैला दी, बुद्ध के समय भी फैली, अशोक ने तो सारे भारत में फैलाई, बाहर भी फैलाई, वो सारा उसका प्रभाव है उस पर। उसको पढ़ता हूँ तो देखता हूँ बुद्धवाणी ही बुद्धवाणी, अरे सारी विपश्यना ही विपश्यना, हर एक सूत्र विपश्यना 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 से भरा हुआ, और ऐसी बातें जिनको लेकर के हम बुद्ध की वाणी का विरोध करते हैं, बुद्ध की शिक्षा का विरोध करते हैं, वो सारा बुद्ध ने चार आर्य सत्य सिखाए, तो हमारे यहाँ का एक आचार्य कहता है कि पहली बात तो ये कि उसको और कोई सच्चाई नजर नहीं आई, दुख की बात करता है, ये भी दुख ये भी दुख ये भी दुख, तो बड़ा दुखवादी है, और फिर क्या ना समझिए ये आर्य है, दुख की बात आर्य हुआ करती है कभी, उसको आर्य कहता है, बेचारे को नहीं समझती इसलिए ऐसी बातें कहती, वो वैसे के वैसे उसमें है, वही दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, निवारण का उपाय है, शब्द बदल दिए लेकिन अर्थ बिल्कुल वो को चरण रखती है। हम लांछन लगाते हैं कि बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, अनात्मवादी है अनात्मवादी है, बुद्ध कहता अनित्य है, दुख है, अनात्म है और अशुभ है, उसको जैसा है वैसे ही मानो, जो अनित्य है उसको नित्य मत मान लेना, जो दुख है उसको सुख मत मान लेना, जो अनात्म है उसको आत्म मत मान लेना, जो अशुभ है उसको शुभ मत मान लेना, सुंदर मत मान लेना। अरे यही बात वो कहता है, वो कहता है अविद्या किसको कहते हैं, पतंजल कहता है अविद्या किसको कहते हैं, अविद्या उसको कहते हैं कि जो अनित्य को नित्य मानता है, दुख को सुख मानता है, अनात्म को आत्म मानता है, अशुभ को शुभ मानता है, वो अविद्या है। ये बुद्धवाणी है, किसकी वाणी है, कैसे प्रभावित होता है एक दूसरे से, हम निंदा स्तुति की बात नहीं है, दो परंपराएं हैं कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। सारा का सारा योग सूत्र पढ़ जाएं, भरी पड़ी है विपश्यना विपश्यना की बातें, भूल गए ये संप्रज्ञात समाधि, ये असंप्रज्ञात समाधि, यही भूल गए संप्रज्ञान किसको कहते हैं, जो स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ संप्रज्ञान कैसे हुआ, और स्थित प्रज्ञ वो हुआ जो प्रतिक्षण संप्रज्ञान में स्थित है, प्रतिक्षण खाते पीते चलते फिरते हर अवस्था में, कहाँ कहाँ करता है, कौन करता है, कैसे करता है, करना ही नहीं आया ना, बातें खत्म हो गई ना। तो भाई समझो, अच्छी बातें केवल पाठ करने के लिए नहीं होती, अच्छी बातें केवल बुद्धि से चिंतन करने के लिए नहीं होती, अच्छी बातें जीवन में उतारने के लिए होती है, अनुभव करने के लिए होती है। जब करने लगोगे तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा, किसको क्या कहेंगे, अच्छी बात तो ये है, अच्छी बात तो ये है, उसको भूल गए, इसलिए सारी सारी गंदगियाँ शुरू हुई। मैंने जो कुछ भी अध्ययन किया उससे दो बात मेरे सामने आई कि मूल बात क्या, बुद्ध के मुंह पर जो कालख लगाने की, उसकी शिक्षा को कलंकित करने की मूल कारण क्या, ये तो ऊपर ऊपर की कहीं ना कोई दोष ढूंढो, कहीं ना कोई दोष ढूंढो, मूल बात क्या। मूल बात दो ही समझ में आई हम तो, कि उस समय देश में जो यज्ञ होते थे उनमें बलि चढ़ती थी, पशुओं की बलि, पक्षियों की बलि, मनुष्यों तक की बलि। तो स्वयं अपना महाभारत कहता है कि यह कैसे यज्ञ हैं, ये कैसे यज्ञ हैं, जो खून लथपथ हो रहा है जहाँ पर, ये कोई यज्ञ है? बुद्ध ने भी कहा ये क्या यज्ञ है, तुम किसी पशु की हिंसा करते हो और कहते हो जो मारा गया वो स्वर्ग जाएगा, मारने वाला भी स्वर्ग जाएगा, यज्ञ कराने वाला भी स्वर्ग जाएगा, अगर ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे फिर नर्क में कौन जाएगा? तो बंद किया उसने, लोगों को समझा करके बड़े प्यार से, गालियाँ निकाल के, नहीं क्या कर रहे हो, इसको तुम धर्म कहते हो? तो जिन लोगों का वो व्यवसाय था, आजीविका थी, उनके पेट पर चोट लगी, बंद होते चले गए। इस तरह के यज्ञ बंद होते चले गए, ऐसे यज्ञों में उनको बहुत आमदनी होती थी, बंद हो गए। तो हम देखते हैं भारत में आकर के अब लोगों में, बहुत से लोगों में ब्राह्मणों के खिलाफ गालियां देने का एक स्वभाव हो गया, जैसे बुद्ध और उसकी शिक्षा के खिलाफ, वैसे ही बहुत से लोगों में ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ऐसे हैं, ये ब्राह्मण। अरे समझो भाई, पहले तो ब्राह्मण समाज से क्या लेना देना, काम तो इन पुरोहितों का है ना। सारे ब्राह्मण समाज में पुरोहित कितने होंगे, गिनती के, और उन पुरोहितों में भी ये शास्त्र बनाने वाले कितने, जिन्होंने भी शास्त्र लिखे वो कवि हैं, वो विद्वान हैं, और गिनती के, तो दोष उनका है ना। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें लिख दी जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, तो दोष उनका है। सारे ब्राह्मण समाज को काय काली निकालो, ये झगड़े की बातें हैं, उसको दूर करो। कोई गलतियां थी उसको बुद्ध ने दूर किया, तो प्यार से दूर किया, गालियां निकाल के नहीं दूर किया। दूसरी बात, जिसको लेके लोगों को चोट लगी, हम समझते हैं धीरे 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 धर्म का ह्रास होने लगा, धर्म का विनाश होने लगा, धर्म की हानि होने लगी, धर्म की ग्लानि होने लगी। धर्म क्या है? सदाचार का जीवन जीना धर्म है, चित्त को संयमित रखना धर्म है, चित्त को निर्मल रखना धर्म है। ये व्यक्ति महान है, जो ऐसा होगा वो महान है, जो ऐसा नहीं है वो नीचा है। पलट दिया उसे, पतितोपि द्विजः श्रेष्ठ न च शूद्रो जितेन्द्रिय। कितना ही पतित क्यों न हो, द्विज तो श्रेष्ठ ही रहेगा, कितना ही सदाचारी क्यों न हो, शूद्र है तो नीचा ही है। धर्म का ह्रास हो गया ना, एक तराजू के एक पलड़े पर धर्म और तराजू के दूसरे पलड़े पर जन्म और जाति, तो जन्म और जाति महान, धर्म नीचा। तो वो तोड़ा भगवान ने समझाया, कर क्या रहे हो, धर्म को नाश मत होने दो, उसको उठाओ ऊंचा, और जो गलत बात है उसको खत्म करो। अच्छा आदमी तो अच्छा आदमी, अच्छा काम करेगा तो अच्छा आदमी, जिसमें सौजन्यता होगी वो सज्जन होगा, जिसमें दुर्जनता होगी दुर्जन होगा, किसी माँ के पेट से जन्मा हो। ये बात उन लोगों को चोट लगी जो अपने को झूठ मूठ दम्भ के मारे महान मानते थे, हम तो ब्राह्मण के माँ के पेट से जन्मे, हम महान हैं, ये शूद्र के माँ के पेट जन्मे, नीचा है। गलत बात थी ना, उस गलत बात को दूर करने की कोशिश की और प्यार से कोशिश की। अब उसको लेकर के अगर किसी के नासमझी से चोट लगी और उसने तरह तरह की बातें फिर बुद्ध के खिलाफ कहनी शुरू कर दी, ऐसी अवस्था में जबकि बुद्ध भी नहीं है, ऐसी अवस्था में जबकि बुद्ध शिक्षा भी नहीं है, ऐसी अवस्था में जबकि उस शिक्षा की विपश्यना भी नहीं है, जो चाहो सो कह दो, एक झूठ को 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो तो सच लगने लगी, ये तो करोड़ों बार बोली गई, शास्त्रों में लिखी गई, शास्त्र वचन प्रमाण, तो अपने आप लोग मानने लगे। आज होश करो, निंदा नहीं, जिन्होंने इस तरह गलत बात लिखी उनकी भी निंदा नहीं, जिन्होंने कोई गलत रास्ता अपनाया उनकी भी निंदा नहीं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, खराब बातें भी तो प्रभावित हुई। बुद्ध के इतने शुद्ध शिक्षा में कितनी खराब बात हुई। मैं बहुत दिनों तक, और आज ही मेरे मन पर स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं मानता हूँ कि भारत में ये दो दो व्यक्ति, महान व्यक्ति ऐसे हुए, ये पिछले दिनों में, एक स्वामी दयानंद और एक स्वामी विवेकानंद, ये दोनों व्यक्तियों ने अगर बुद्धवाणी पढ़ी होती, इन दोनों व्यक्तियों ने अगर विपश्यना की होती, भारत बदल जाता। इतने प्रभावशाली व्यक्ति था नहीं ना, क्या करे। लेकिन फिर भी जितना उन्होंने अपनी ओर से बताया, कल्याण ही कल्याण की बात बताई। तो ऋषि दयानंद अपने पुस्तक में लिखते हैं कि देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य हुआ, शिव के भक्तों ने शिव की क्या हालत कर दी, विष्णु के भक्तों ने विष्णु की क्या हालत कर दी, माने अपने ही ईश्वरों को व्यभिचार करवाया। क्या दुर्गति हुई देश में, शिव के नाम पर भैरव चक्र चलने लगे। कहाँ धर्म चक्र बुद्ध का, जो लोगों को शुद्ध बनाता है, भैरव चक्र चलाए गए। उस भैरव चक्र में पंचमकार, और सबसे बड़ी गंदी बात कि काम भोग की छूट, अपनी पत्नी से काम भोग की छूट हो तो अलग, दूसरे की पत्नी से भी, अपनी पुत्री से भी, अपने पुत्र वधु से भी, दूसरे की पत्नी से भी, दूसरे की पुत्री से भी, दूसरे के पुत्र से कोई रोक टोक नहीं, अपनी माँ से भी काम भोग करो। ये भैरव चक्र देश में फैला, देश में फैला, विदेशों में गया। भगवान बुद्ध की शिक्षा को भी नष्ट किया, उसमें भी ऐसी गंदगी आनी शुरू हो गई। मैं बर्मा में रहने वाला व्यक्ति, देखा मैंने वहाँ के इतिहास में कि पगान राज्य में अपने आप को आर्य कहने वाले भिक्षु इस गंदगी में पड़ गए। कितनी बड़ी गंदगी वहाँ पर, ये बुद्ध की शिक्षा और ये हालत है, ऐसा तंत्र। तो दक्षिण का एक व्यक्ति जिन्होंने बुद्ध की शिक्षा शुद्ध रूप में कायम रखी, विपश्यना भी और वाणी भी, उसे मालूम हुआ तो आया, पगान राज्य के राजा को समझाई सारी बात कि बुद्ध की शिक्षा ये है, आप लोग क्या कर रहे हैं। उसके समझ में आई और नष्ट किया उस सारे को। तो खराब प्रभाव भी आया, अच्छा प्रभाव भी आया। तो जो खराब प्रभाव है उसे दूर करना चाहिए, दूर हुआ ना, बर्मा में दूर हुआ, ऐसे यहाँ भी दूर हुआ, दूर करना चाहिए। अच्छे प्रभाव है उसको उठाना चाहिए, जहाँ भ्रांतियाँ उसको भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। लक्ष्य ये हो कि अच्छी बातों का संगम हो, अच्छी बातों का संयोजन हो, समन्वय हो, सामंजस्य हो, जिससे सबका कल्याण हो। ये सारा जो अधिवेशन इस काम के लिए, बहुत भ्रम है। एक और ये भ्रम है, ये ब्राह्मण ऐसे गए गुजरे, ऐसे गए गुजरे, एक और ये भ्रम है, ये बौद्ध ऐसे गए गुजरे, ऐसे गए गुजरे। अरे बाबा, अच्छी बातों को पकड़ो ना और बुरी बातों को एक और रखो। क्या करोगे उन बुरी बातों को बार 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 कह करके, क्या करोगे। इस सम्मेलन में आए हैं जिन्होंने विपश्यना नहीं की है, उनकी मैं समझता हूँ वही दशा है जो मेरी 31 वर्ष की उम्र तक रही। कितनी भ्रांति, कितना भ्रम बुद्ध की शिक्षा पर, और करने के बाद पहले शिविर में कैसा परिवर्तन आने लगा। कोई मुझ पर किसी ने जादू नहीं किया, कोई मुझको हिप्नोटाइज नहीं किया, अपनी बुद्धि से समझ करके, अपने अनुभव समझ करके, ऐसे दुनिया भर के हजारों नहीं लाखों लोग आज कर रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है वो अपने जीवन के 10 दिन देवे अजमाने के लिए कि बुद्ध के बारे में हमें बहुत भ्रांतियाँ हैं, विपश्यना के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं, अजमा के तो देखें। अजमा के देखेंगे तब समझ में आएगा, अरे हमारी वैदिक परंपरा में भी कितनी अच्छी बातें। ये जो हम आयुर्वेद की बात करते हैं, वैदिक परंपरा की बात है। जीवक ने वहाँ जाकर के सीखा, तक्षशिला में, जहाँ वैदिक परंपरा का बहुत बड़ा विद्यालय था, वहाँ जाकर सीखा, तो वैदिक परंपरा है। ऐसे ही विपश्यना श्रवण परंपरा है। अरे दोनों का लाभ उठाएं, शरीर का लाभ होता है अच्छी बात है, मन का लाभ होता है अच्छी बात है, दोनों का लाभ होना चाहिए। तो एक दूसरे की खोट देखने के बजाय एक दूसरे में जो गुण हैं उनको जोड़ें, उनका समन्वय करें, उनका सम्मिश्रण करें, अपने भले के लिए करें, औरों के भले के लिए करें। तो आमंत्रण देता हूँ जो जो आज के इस संभाषण गोष्ठी में आए हैं, मुझे अपने जीवन के 10 दिन मुझे दान दें। मैं मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ अपने जीवन के 10 दिन, और देखें कि वस्तुतः ये भारत की कितनी ऊंची ऊंची परंपरा, कितनी ऊंची शिक्षा, इसका लाभ स्वयं भी उठाएं, और कौन जाने तुम्हारे उठाने के बाद औरों का भी कल्याण होना शुरू हो जाए। तो अपने भले के लिए, औरों के भले के लिए जीवन के 10 दिन दे करके इस विद्या को जरूर सीखें। जो जो आज के इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं उन सब का खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, स्वस्थ हो, मुक्ति हो।
खूब मंगल हो।
भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। भला हो मंगल हो, भला हो मंगल हो। सब का मंगल हो रे, तेरा मंगल हो दे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया हो रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे, मुक्ति दुखों से हो रे, मुक्ति दुखों से हो रे। राग द्वेष के बंधन टूटे, राग द्वेष के बंधन टूटे, मुक्ति मोह से हो रे। सबका मंगल हो रे। शुद्ध धर्म घर घर में जागे, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, घर घर शांति समाए रे, घर घर शांति समाए रे। नर नारी हो धर्म विहारी, सब नर नारी धर्म विहारी, घर घर सुख छा जाए रे, घर घर मंगल छाए रे। सबका मंगल हो रे।